ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಳಿ, 26th October 1975. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇಸ್ ಶೃಂಖಲಾ ಮೇ ಆಜ್ ಕಿ ಅಗ್ಲಿ ಕಡಿ. ತೋ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ, ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಅವಜ್ಞಾ ಕೆ ಬೋಝ ಸೆ ಊಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ ಪಹುಂಚ ನಹೀ ಸಕೆಂಗೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಿ ಲೈನ್ ಕೆ ಬಜಾಯ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಿ ಲೈನ್ ಮೇ ಖಡೆ ಹೋಂಗೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಿ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಹೋಗಿ ಔರ್ ಅವಜ್ಞಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕೆ ನಯನ ಔರ್ ಮುಖ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಾ ಆವಾಜ್ ನಿಕಾಲೆಂಗೆ. ಔರ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಐಸಿ ಆತ್ಮಾವೋ ಕೋ ಕುಲ್ ಕಲಂಕಿತ ಕಿ ಲೈನ್ ಮೇ ದೇಖೆಂಗೆ. ಅಪನೆ ಕಿಯೆ ವಿಕರ್ಮೋ ಕಾ ಕಾಲಾಪನ್ ಚೆಹರೆ ಸೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಖಾಯಿ ದೇಗಾ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಅಬ್ ಸೆ ಯಹ ವಿಕ್ರಾಲ್ ಭೂಲ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಡಿ ತೆ ಬಡಿ ಭೂಲ್ ಸಮಜ್ ಕರ್ ಅಭಿ ಹಿ ಅಪ್ನಿ ಪಿಛ್ಲಿ ಭೂಲೋ ಕಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ದಿಲ್ ಸೆ ಕರ್ಕೆ ಬಾಪ್ ಸೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರ್ ಅಪ್ನಾ ಬೋಜ್ ಮಿಟಾವ್. ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಕಡಿ ಸಜಾ ದೋ ತಾಕಿ ಆಗೆ ಕಿ ಸಜಾವ ಸೆ ಭಿ ಛೂಟ್ ಜಾಯೆ. ಅಗರ್ ಅಬ್ ಭಿ ಬಾಪ್ ಸೆ ಛಿಪಾಯೆಂಗೆ ವ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಸಚ್ಚ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ ಕೆ ಚಲಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೆ. ತೋ ಅಭಿ ಚಲಾನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂತ ಮೇ ಔರ್ ಅಬ್ ಭಿ ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ಮೇ ಕಿ ಅನುಭೂತಿ ನಹೀ ಹೋತಿ ಐಸೆ ಅಬ್ ಭೀ ಚಿಲ್ಲಾಯೆಂಗೆ ಔರ್ ಅಂತ ಮೇ ಹಾಯ್ ಮೇರಾ ಭಾಗ್ಯ ಕಹ ಚಿಲ್ಲಾಯೆಂಗೆ. ತೋ ಅಬ್ ಕಾ ಚಲಾನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಚಿಲ್ಲಾನಾ. ಅಗರ್ ಅಭಿ ಬಾತ್ ಕೋ ಚಲಾತೆ ಹೋ ತೋ ಅಪ್ನೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಕದೀರ್ ಕೋ ಚಲಾತೆ ಹೋ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಇಸ್ ವಿಶೇಷ ಬಾತ್ ಪರ್ ವಿಶೇಷ ಅಟೆನ್ಷನ್ ರಖೋ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮೇ ಭಿ ಇಸ್ ವಿಷ ಭರೇ ಸಾಪ್ ಕೋ ಟಚ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮೇ ಭಿ ಟಚ್ ಕರ್ನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಮೂರ್ಛಿತ ಕರ್ನಾ. ತೋ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಬೇಲಾಪನ್ ದೇಖಾ. ದೂಸರಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ ಸುನಾಯಿ ಥೀ, ಸಾರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಲ್ ಸುನಾಯಿ ಥೀ ಕಿ ಕಿನ್ ಕಿನ್ ಬಾತೋ ಮೇ ಚಡ್ತಿ ಕಲಾ ಕೆ ಬಜಾಯ ರುಕ್ ಜಾತೆ ಹೈ, ತೀವ್ರ ಗತಿ ಕೆ ಬಜಾಯ ಮಧ್ಯಮ ಗತಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ, ಯಹ ಹೈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಿ ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಜಬ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ರಿಯಲೈಜ್ ಕರೋ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂತಿಮ ರಿಯಲೈಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತ ಕರೋ. ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಅಚ್ಚಿ ತರ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಹರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಚೆಕ್ ಕರೋ. ಸರ್ವ ಮರ್ಯಾದಾವೋ ಕೋ ಬಾಪ್ ಕೆ ಫರ್ಮಾನೋ ಕೋ ಔರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ ಕೋ ಕಹಾ ತಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೇ ಲಾಯಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಚೆಕ್ ಕರೋ. ಔರ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಮಧುಬನ್ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮೇ ಸದಾಕಾಲ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಆಹುತಿ ಡಾಲೋ. ಸಮಝಾ, ಅಭಿ ಬಾಪ್ ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಕಾ ಉಲ್ಟಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಹೀ ಉಠಾವೋ, ನಹೀ ತೋ ಅಂತಿಮ ಮಹಾಕಾಲ ರೂಪ ಕೆ ಆಗೆ ಏಕ ಭೂಲ್ ಕಾ ಹಜಾರ್ ಗುನಾ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ. ಅವ್ಯಕ್ತವಾಣಿ, 26th October 1975. ಬಾಬಾ ಕಹ ರೇ, ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಅವಜ್ಞಾ ಕೆ ಬೋಝ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ. ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಅವಜ್ಞಾ, ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಕಾ ಉಲ್ಲಂಘನ್, ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಕೋ ತೋಡ್ನಾ, ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಕೋ ಭೂಲ್ನಾ, ಡಿಸ್ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅನಾದರ್ ಕರ್ನಾ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾ ಶ್ರೀಮತ್ ಕಾ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮರ್ಯಾದಾ ಹೋಗಾ ತೋ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ. ಊಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ ಪಹುಂಚ ನಹೀ ಸಕೆಂಗೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಕೋ ತೋಡನೆ ಕಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಝ ಆತ್ಮಾ ಕೆ ಉಪರ್ ರಹೇಗಾ. ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೋ ನಿಯಮ ಜೋ ಧಾರಣಾಯ ಜೋ ಮರ್ಯಾದಾಯ ಜೋ ಶ್ರೀಮತ್ ದಿ ಗೈ ಹೈ, ಜಬ್ ಜಬ್ ಆತ್ಮಾ ಉನ್ಕೋ ತೋಡೇಗಿ ಚಾಹತೆ ಹುಯೆ ಯಾ ನ ಚಾಹತೆ ಹುಯೆ, ತಬ್ ತಬ್ ಊಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸೆ ನೀಚೆ ಆ ಜಾಯೆಗಿ. ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगी। एक दूसरा, प्राप्ति करने वालों की लाइन की बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होना पड़ेगा, अर्थात दो लाइनें लगेगी। अर्थात सोचो, भगवान के सामने दो कतारें लगी हुई है, एक कल्पना कि दो लाइनें खड़ी है, एक तरफ पश्चाताप करने वालों की लाइन है और दूसरी तरफ प्राप्ति वालों की लाइन है, मैं कहाँ हूं। तीसरा, प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और पश्चाताप करने वाले क्या करेंगे, हाय हाय किससे करेंगे, मुख से तो ठीक है, नैन से क्या है। बाबा कह रहे नैन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे, उनकी आंखें भी बोलेगी, बोलती निगाहें, रोती निगाहें, आंखों से खून के आंसू बहेंगे। सबसे ज्यादा पश्चाताप कौन करेंगे, संसार की आत्माएं या ब्राह्मण? क्यों? सब कुछ जाना, सब कुछ समझा, उसके बाद में भी नहीं किया। उधर रक्त की नदियां बहेगी और इधर खून के आंसू बहेंगे, पश्चाताप के आंसू बहेंगे। चौथा, सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को किस लाइन में देखेंगे, कुल कलंकित के लाइन में देखेंगे। और पांचवा, अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा, चेहरा नैन सबसे दिखाई देगा, जो विकर्म हुए पाप हुए। इसलिए क्या करो अब, अगर ये परिणाम है, इसलिए अब से यह विकराल भूल, कौन सी विकराल भूल, इसके पहले पिछली क्लास में जो थे उसी का ये आगे का भाग है, बुक है। इसलिए अब से यह विकराल भूल, अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ के अभी से ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। जो विकर्म हो गया, जो पाप हो गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता, परंतु अब क्या करना है, फिर बाबा को स्पष्ट रूप से बता दो। अब उसको छिपाओ नहीं, दुनिया से छिपा सकते, भगवान से नहीं छिपा सकते। मैं निराकार तुम्हारे एक एक संकल्प को जानता हूं। तो अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप कैसे करना है, दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ क्या करो, मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाएंगे, सेल्फ पनिशमेंट, सेल्फ फ्लैजिलेशन, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेट होता है एक चाबुक जिससे कई धर्मों में अपने आप को सजा देते हैं, मारते हैं। अगर अब भी बाप से छिपाएंगे, वो अपने को सच्चा सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, तो अभी चलाना अर्थात अंत में अब भी अपने मन में की अनुभूति नहीं होती, ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कहे चिल्लाएंगे, तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। अप का चलाना अर्थात चिल्लाना, अप का चलाना अर्थात तकदीर को जलाना। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। तो सेल्फ पनिशमेंट, अपने आप को सजा दो। कह रहे बाबा, कौन सी सजा देंगे अपने आप को? नाश्ता नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, क्या सजा देंगे? बहुत बड़ी गलती कर दी, भूल हो गई, सजा क्या देंगे? संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। पश्चाताप वाली किताब नहीं, संकल्प में भी क्या इस विष भरे सांप को? कौन सा सांप? कौन सा विष भरा सांप? कोबरा? कौन सा शरीर? टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात मन में, संकल्प में, कल्पना में, सेंशुअल फैंटेसीज, अर्थात अपने को मूर्छित करा देना। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा, तो क्या सुना? अगर आप भी अपने आप को नहीं सुधारेंगे, नहीं ठीक करेंगे, तो किसकी लाइन में आना पड़ेगा? पश्चाताप करने वालों की लाइन में आना पड़ेगा। रोना पड़ेगा, हाय हाय चिल्लाना पड़ेगा, भाग्य जल जाएगा। इसलिए क्या करो, अभी भी अपनी सारी बातें बाप को सुनाकर स्पष्ट कर कर हल्के हो जाओ, बोझ को मिटा दो। तो क्या पनिशमेंट देंगे अपने आप को? सेल्फ पनिशमेंट, बाबा ने कह दिया है, अपने आप को सजा दो। भक्ति मार्ग में, धर्म शास्त्र में 10 विधियां लिखी है पश्चाताप की। अगर कोई महापातक पाप हो जाता है तो ये 10 चीजें करो तो उससे मुक्त हुआ जा सकता है। कौन कौन सी? इसके पहले शायद चर्चा की थी कभी। कौन सी? सबसे पहला दान। भक्ति मार्ग में यदि कोई पाप हो जाता है तो क्या बताया जाता है? दान पुण्य करो। यहां कौन सा दान करेंगे? विकार का दान, पाप का दान, कोई आदत का दान, कोई एक आकर्षण, अट्रैक्शन, प्रलोभन, कोई एक गहरी आदत बन गई है, कोई इच्छा, कोई सूक्ष्म वासना, कोई संस्कार, उसका दान कर दो। तब वास्तविक पश्चाताप होगा, तभी यही अपने आप को दंड देना है। जैसे वो इस्लाम में शिया क्या करते हैं? हाय हुसैन, चाबुक से अपने आप को मारते हैं ना, मोहरम। इमाम हुसैन, करबला का युद्ध, उसकी यादगार में जो दुख उसने सहन किया हम भी सहन करेंगे। अपने आप को मारते हैं, सेल्फ फ्लैजिलेशन जिसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्मों में अलग अलग है। तो सबसे पहली विधि है खुद को दंडित करने की, पश्चाताप करने की, दान कर देना। जब पता है ये जो पाप हुआ इस इच्छा से हुआ, ये जो पाप हुआ इसका मूल कारण ये संस्कार है, ये जो पाप हुआ ये देखने की वजह से हुआ, अब इसको देखना ही बंद कर देंगे। ये जो पाप हुआ हो सकता है टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया या इसी तरह की किसी एक बात की वजह से हुआ, क्योंकि वो देखा उसके बाद ही इच्छा प्रकट हुई, उसके पहले नहीं थी। तो पहली विधि है पश्चाताप की, दान। दूसरा उपवास। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? व्रत रख लेते हैं, कठोर व्रत, निर्जन उपवास, निर्जल निराहार रहते हैं। यहां क्या करना है, कौन सा उपवास रखना है? उपवास, उपासना। उप अर्थात समीप, उपवास अर्थात समीप वास करना, अर्थात भगवान के समीप रहना। उपासना वह आराधना जिससे भगवान के समीप रहे, उसे उपासना कहा गया है। और वह अभ्यास जिससे हम भगवान के सानिध्य में रहे, वो उपवास है। तो यहां क्या करना है, उपवास अर्थात अपने योग के चार्ट को बढ़ाना, अधिक से अधिक समय भगवान के सानिध्य में गुजारना। फिर वो सानिध्य, उससे बात करना हो सकता है, लंबा लंबा समय उसके समीप रहना, उससे बात करना, उससे संबंध निभाना। चाचा मामा काका सब छोड़ो, आज की मुरली में स्वयं को देही समझो। जब तक 8 घंटा सेवा ना करो, खाना हराम है। आज आया है, तो उसके समीप रहने का अभ्यास, और वैसा भी उपवास जो भक्ति मार्ग में किया जाता है वो भी यहां भी किया जा सकता है। चलो पूरा नहीं, कम तो किया जा सकता है, मात्रा। मर नहीं जाएगा कोई यदि कम खाएगा तो, बहुत है बॉडी में स्टोर। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कहीं लिखा है, थॉमस जेफरसन, कि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो इस बात के लिए पश्चाताप करता है कि पिछले दिन मैंने कम क्यों खाया, कल मैंने कम क्यों खाया, ज्यादा खाना चाहिए था। पश्चाताप इसलिए करता है ज्यादा खाया, कल नाश्ता कम क्यों किया, इतना अच्छा बना था, कोई कहता है ऐसा? कल रात में भोजन मैंने कम क्यों खाया, कम के लिए पश्चाताप नहीं होता है कभी भी खाने में, किसके लिए होता है? ज्यादा, क्योंकि अभी भारी भारी लग रहा है और गड़बड़ हो रही है, कम खाने के लिए कुछ नहीं होता है। पिकनिक मिस हो गई। तो उपवास सूक्ष्म भी और स्थूल भी उपवास। स्थूल उपवास अर्थात एक तो वो जो भक्ति मार्ग वाले करते हैं, और दूसरा कम खाने वाला उपवास, वो ज्यादा कठिन है। पूरा ही ना खाना थोड़ा आसान है, पर कम खाना ये थोड़ा मुश्किल है। इतना अच्छा अच्छा बना हुआ है और हम थोड़ा सा ही ले। योगी अर्थात इंद्रिय जीत, योगी अर्थात जिह्वा जीत, योगी अर्थात रसेंद्रिय जीत, योगी अर्थात स्वाद से परे। तो दूसरी विधि है पश्चाताप की, उपवास। बहुत बड़ी गलती हो गई, उपवास करो, अमृत वेला ही मिस हो गया, क्या करेंगे? अब अपने आप को पनिशमेंट दो, आज 4 घंटा योग करेंगे कैसे भी करके। बैठा हुआ फिर 1 घंटा सुबह, 1.5 घंटा दोपहर को, शाम को, और वापस रात को, तब तक सोएंगे ही नहीं। ये है पनिशमेंट। खाली भोजन छोड़ देना वो पनिशमेंट नहीं है, नाश्ता छोड़ दिया और दोपहर में के भोजन पर ऐसा टूट पड़े कि पता नहीं दोपहर दिन रोज जितना खाते हैं उससे डबल खा लिया, क्योंकि अभी एक भाव मन में है कि सुबह का छूट गया था उसकी पूर्ति करनी है। तो दूसरी विधि है उपवास, तीसरी विधि है पश्चाताप की तप, तपस्या करना। जब भी किसी के किसी राजा या किसी के भी हाथ से कोई पाप हो जाता था तो तपस्या करते थे, जंगलों में जाकर राजपाट से दूर जाकर राजाए तपस्या करते थे, तापसी जीवन जीते थे, साधारण जीवन, जमीन पर सोते थे, कंदमूल फर खाते थे, वो राजसी थाट बाट का त्याग कर देते थे क्योंकि पाप हुआ है। तो पश्चाताप की विधि है तपस्या, स्वयं को तपस्या कुंड में झोंक देना। तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक वो पाप, वो विकर्म, वो कुकर्म, वो गलती, वो गफलत, वो भूल भस्म ना हो जाए। जैसे अंगुलीमाल दिखाया है, महात्मा बुद्ध के सानिध्य में आता है और एक उंगली की उसे आवश्यकता है, 999 हो गई है, 1000 करनी है उसको, पर जैसे ही महात्मा बुद्ध के सानिध्य में आता है आमूल परिवर्तन हो जाता है। महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं तेरे पीछे जो पत्तिया है उस पत्ते को तोड़, वो तोड़ता है, वो कहते हैं लगाओ इसको वापस, वो कहते ये कैसे लग सकती है वापस, वो चरणों में झुकता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किए, इतने लोगों को मारा। महात्मा बुद्ध कहते हैं माफी तुम्हें मेरी नहीं, उन लोगों की मांगनी है, किसकी कोक उछाड़ दी, किसका सुहाग। और वो जाता है भीड़ में, लोगों के बीच, और लोग उसे पत्थरों से मारते हैं और अंत में उसकी मृत्यु भी होती है। परमात्मा बुद्ध कहता है मैं तुम्हारी मृत्यु पर खुश हूं क्योंकि अब तुम जो मर रहे हो महान आत्मा के रूप में मर रहे हो, क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, उसके बाद जा रहे हो। तो तप करना, जैसे वो रामायण में दिखाया है वो रत्नाकर डाकू तप करने बैठता है और वाल्मीकि बन जाता है। तो जब भी कोई गलती हो विधि है तपस्या करना। और जब तपस्या की जाती है तो भोग और विलासिता से दूर रहा जाता है। तपस्वी और भोगी में बहुत अंतर है और बिना तपस्या के आत्मा में निखार भी नहीं आता है, आत्मा मलिन रहती है, द्वंद रहता है, धुंधलापन रहता है, दिखाई नहीं देता, स्पष्टता नहीं रहती है। तो तीसरी विधि क्या है? तपस्या। चौथी तीर्थ यात्रा। पाप होता है तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं ताकि वो पाप धुल जाए। हमें कौन सी तीर्थ यात्रा करनी है? रूहानी यात्रा, मधुबन की यात्रा, चार धाम की यात्रा, मन से और स्थूल रीति से भी, जो बाहर रहते हैं वो मधुबन में आए, या सेवा केंद्र की यात्रा, या सत्संग की यात्रा, या ऐसे जगह की यात्रा जहां ब्राह्मण आत्माएं हैं, या ऐसे स्थान पर जहां जाना जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, जहां पुरुषार्थियों का संग है, जहां अव्यक्त मुरलियों पर चिंतन मनन अध्ययन हो रहा है, ऐसे स्थान पर केवल आकर बैठना भी सत्संग है। और ऐसा सत्संग बार बार मिलना जीवन में हरि कृपा है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। महान आत्माओं का बार बार आगमन जीवन में परमात्मा कृपा है। तो तीर्थ यात्रा पर जाना, एक तो स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है संसार का? परम धाम, सबसे पावन धाम, पवित्र धाम। उस पवित्र धाम में जाना, वहां के प्रकंपनों के बीच, वहां की ऊर्जा के बीच स्थित हो जाना। परम धाम घर है, उस घर की यात्रा करना, उस तीर्थ की यात्रा करना, सूक्ष्म वतन की यात्रा करना और स्वर्ग की यात्रा करना, सभी पवित्र स्थान है। वहां जाते ही चित्त शुद्ध होगा, अपने उन संस्कारों को इमर्ज करना, देव स्वरूप के देवत्व इमर्ज करना, देखना मैं वहां हूं। तो तीर्थ यात्रा, उसके बाद है अनुतप, पश्चाताप की अगली विधि अनुतप। अनुतप क्या होता है? एक बताया तपस्या, फिर बताया तीर्थ यात्रा, फिर है अनुतप। अनुतप अर्थात बार बार अपने उस विकर्म को, उस पाप को याद करना, स्वयं को थोड़ा कोसना, तिरस्कार करना और कहना तुमने ये कैसे कर दिया, अपने आप से बात करना और फिर प्रतिज्ञा करना इसके बाद ये कभी नहीं करूंगा, मैं इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा और ऐसा पाप मेरे से हो गया। आत्मग्लानी का भाव जबरदस्ती लाना, देखना अपने आप को कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, तिरस्कृत करना खुद को थोड़े देर, ताकि उस पाप के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, ताकि वो पाप फिर से ना हो, नहीं तो वो फिर होते रहेगा। इस विधि को कहा जाता है अनुतप, अपने आप को याद दिलाना और प्रतिज्ञा करना, ये भी आवश्यक है। नहीं तो हम समझते रहेंगे हमारे से तो जो हुआ बहुत ही छोटा है, ये सब सभी तो करते हैं, हमने किया तो क्या फर्क पड़ता है, सब करते हैं। अगर ये भाव है तो वो होते ही रहेगा। एक गलती पुनः न करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। परिभाषा दी है बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की, एक गलती पुनः, एक गलती जो हो गई है वो पुनः रिपीट न करना, इसे कहा गया है तीव्र पुरुषार्थ। उसके बाद है होम, उसके बाद होम करना। होम करना अर्थात यज्ञ करना, स्वाहा करना यज्ञ में, ये विधि है पश्चाताप की। यज्ञ रचना, होम करना, उसमें अर्पित कर देना कि ये हो गया, अब मैं इसमें अर्पित कर देता हूं। या यज्ञ रचना, ज्ञान यज्ञ रचना, तप यज्ञ रचना, जप यज्ञ रचना, वैराग्य यज्ञ रचना, योग यज्ञ रचना, खुद ही अपनी भट्टी खुद ही बनाना, खुद ही अपना ज्ञान का चिंतन की भट्टी करना, कि आज सारे दिन भर मौन में रहकर मुझे जो मुरली है उसके ऊपर चिंतन करना है, जो वरदान आया है दृष्टि से लेन देन करो, बाबा ने कहा। दृष्टि से लेना और दृष्टि से देना, यही सबसे बड़ा अभ्यास है, यही काम आएगा तुमको। दृष्टि से शक्तियां लो बाबा से, और इस दृष्टि में इतनी पावर भर दो कि जिसको दृष्टि दो वो सामने की आत्मा जाग जाए, मूर्छा से बाहर निकल जाए, चेतना में फिर से तीव्र पुरुषार्थ की तीव्र लहर उत्पन्न हो जाए। दृष्टि को ही इतने शक्तिशाली बता दो। नैन दीक्षा, तीन प्रकार की दीक्षा है, नैन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा और मंत्र दीक्षा। किसी को हाथ लगा दो और करंट उसको लग जाए प्यूरिटी का। नैन से किसी को दृष्टि ऐसी दे दो कि वो जाग जाए, नैन दीक्षा। मंत्र फूंक दो किसी के कान में तो वो है मंत्र दीक्षा। तो होम, होम अर्थात स्वाहा, यज्ञ प्रज्वलित करो हृदय में, ज्ञान यज्ञ। चिंतन यज्ञ, मनन यज्ञ, अल्फ के सिवा इस संसार में जो कुछ है सब कुछ छाछ है, आज की मुरली में है। एक अल्फ ही मक्खन है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब छाछ। ये नाम मान शान सब छाछ, ये पद पोजीशन सब छाछ, ये धन संपत्ति वैभव सब छाछ, ये मित्र संबंधी रिश्तेदार सब छाछ। अगला स्नान, पवित्र स्नान। भक्ति मार्ग में जब पाप हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान करने जाते हैं। स्नान करो, डुबकी लगाते हैं नदी में। हमें कहाँ डुबकी लगानी है? संगम पर एक अनोखी नदी बह रही है, कौन सी? वो तो है, उसके अलावा सेवाओं की नदी बह रही है। नदी में डुबकी लगाओ, ऐसी नदी फिर नहीं बहेगी। तो पवित्र नदी में स्नान करना, परमात्मा प्रेम की नदी में स्नान करना, वैराग्य की नदी में स्नान करना, तप की नदी में स्नान करना, त्याग की नदी में स्नान करना, ज्ञान की नदी में स्नान करना, तो पाप धुल जाएंगे। वैराग लाना है स्वयं में, व्यक्तियों से वैराग और वस्तुओं से वैराग और संसार से वैराग, पाप कर्मों से वैराग और वाणी से वैराग, वाणी से भी वैराग। आज कहां ना चुप चुप रहते हो तुम, तुम्हारे चुप में बहुत शक्ति है। संसार में क्या है? धम्म चक्र, केओस। अराजकता, डिसऑर्डर, यहां तुम चुप रहते हो तो स्नान। उसके बाद भक्ति मार्ग में अगली विधि है आठवीं, जप। जप करते हैं पाप होने के बाद। कितनी बार माला फिरते हैं? 108 की माला कितनी बार? 108 बार, 1000 बार, कोई कोई भक्त 1,00,000 बार। तो सबके पास माला है क्या? स्थूल माला तो लानी पड़ेगी, लानी तो पड़ेगी। एक माला चाहिए, माला ले लो और जप चालू करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा, हर बार नया समान आना चाहिए, 108 समान, मैं महान आत्मा हूं, मैं रूहानी गुलाब हूं, करते जाओ। वास्तव में करना है, पता तो चले कितने समान याद आते। जब तक नया समान ना बोलो आगे नहीं बढ़ना। वो माला पूरी 108 की पूरी होनी चाहिए, एक एक दाने के साथ, मणके के साथ, एक एक समान। ये भी किया जा सकता है योग का प्रयोग। भक्ति मार्ग में बहुत मालाएं फेरी, अब ज्ञान की माला फेरनी है, समान की माला, संडे की मुरली, मेडल, विशेषता, टाइटल्स कितने होने चाहिए? कम से कम 108 बाप ने दिए हैं, बाप से प्राप्त हुए, अब धारण करो। वो जो लोग शत्रु युद्ध के मैदान में जाते हैं तो मेडल्स लेके आते, तुम भी युद्ध के मैदान में जा रहे हो, तुम भी झंडा लहरा के आ रहे हो। विजय, स्नेह का, सहयोग का मेडल, संपन्नता का, समीपता का मेडल लेकर आओ। तो जप, कौन सा जप करना है? समान का। और कौन सा जप करना है? प्राप्तियों का। क्या क्या मिला है उससे? हम गोद में है वो गायन करते हैं भगत, हम प्राप्ति स्वरूप है वो मांगने वाले हैं आने वाले संडे की मुरली। कंपैरिजन है उनको क्या और तुमको क्या? वो दर्शन के प्यासे है, तुम्हें बाप ने दर्शनीय मूर्त बना दिया है। तो जप, जपा जाप, मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं, मन ही मन गुणगान करना, परमात्मा टाइटल्स को याद करना, स्वयं के समान को याद करना, प्राप्तियों को याद करना, भाग्य की लिस्ट बनाना, तो दुखी नहीं होंगे। नहीं तो कंपैरिजन होगा, इसको सब मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, इसका कमरा अच्छा मेरा ऐसा क्यों, इसको ज्यादा टोली मुझे कम टोली, इसको सब मिल रहा है हमको क्यों नहीं मिल रहा है, ये बहुत आगे जा रहे हैं हम क्यों पीछे रह रहे हैं, इनकी बड़ी वाह वाह हो रही है और हमारी नहीं हो रही। ईर्ष्या, कंपैरिजन, तुलना, ये सब दिखाई देगा। इनको सीट आगे हमको पीछे, हमको कम वीआईपी है क्या? उसके बाद अभिशिष्ट, संस्कृत शब्द है, नवोई विधि पश्चाताप की, अर्थात पब्लिक कन्फेशन। बहुत ताकत चाहिए इसमें, सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार करना, कबूल करना, मानना, कहना, पब्लिक एक्सेप्टेंस, पब्लिक के सामने कन्फेस करना कि हाँ ये हुआ है। ये भी एक विधि बताई है। और लास्ट विधि भक्ति मार्ग में जो बताई है वो है प्राणायाम। पश्चाताप की एक विधि बताई है प्राणायाम, अर्थात जिसमें व्यक्ति अपने श्वासों को कंट्रोल करता है, साधना करता है, योग साधना एक रीति से। यहां पर श्वासोश्वास बाप को याद करना अर्थात प्राणायाम, प्राणों का आयाम, प्राणों की कसरत, कवायद, एक्सरसाइज। सबसे बड़ी एक्सरसाइज है श्वासोश्वास याद करना। एक एक महावाक्य, एक एक श्वास और एक एक संकल्प कितना मूल्यवान है तुम्हारा आने वाले संडे की मुरली, तुम नहीं जानते। एक दिन जानोगे, जब संसार की आत्माएं तुम्हारे सामने आ जाएगी तब तुमको पता चलेगा तुम कौन हो। अब नहीं जानते, अब अलबेलेपन में हो, अब साधारणता में हो, तब जानोगे तुम कौन हो, कितने अमूल्य रतन हो, अमूल्य जीवन है तुम्हारी। तो ऐसी ये 10 विधियां है किसकी? पश्चाताप की। तो क्या सुन रहे थे हम कि इसलिए अब ये विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझकर अभी से अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके, दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, आडंबर नहीं, दंभ नहीं, धोखा नहीं, सेल्फ डिसेप्शन नहीं, आत्म वंचना नहीं। किसको छल रहे हैं? अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझा मिटाओ, अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाएंगे। अगर अब भी बाप से छिपाएंगे, वह अपने को सच्चा सिद्ध कर चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये चलाना अभी हुआ, बाद में क्या करना पड़ेगा? चिल्लाना पड़ेगा। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन जन की श्रेष्ठ तकदीर को चलाते हो। इसलिए संकल्प में भी थॉट लेवल इस विष भरे सांप को, कौन सा शरीर, टच नहीं करना। टच करना अर्थात अपने को मूर्छित कर देना, बेहोश कर देना। और बेहोश व्यक्तियों से गलती होती है, और बेहोश व्यक्ति गिरता है गड्ढे में, तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुक जाते हैं, तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती, यह है मेजॉरिटी की रिजल्ट। इसलिए अब अपने आप को रियलाइज करो अर्थात अंतिम रियलाइज कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। अपने आप को हर तरीके से हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। ज्ञान में चेक करो, ज्ञान की समझ कितनी बड़ी है। जितना ज्ञान कल समझा था आज थोड़ा बड़ा है या वैसा ही है? योग में चेक करो, कल योग में नींद आई थी कि आज भी नींद आ रही है? कल योग साधारण था कि आज भी वैसा ही है, या योग का चार्ट बड़ा है और योग और शक्तिशाली हुआ है, और योग और पावरफुल हुआ है? योग वैसा ही है, उसकी विधि, उसकी ड्यूरेशन, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी है उसकी? अनुभव कितने हो रहे हैं उसमें? अशरीरीपन कितना समय रहता है या बस निमिनात, नियम निभाने वाले, धारणा? धारणा की चेकिंग, आत्मा में धारणा हो रही है या ब्लॉकेज है, बैरियर है कोई? क्यों नहीं धारणा होती, क्यों मुश्किल लगता है, कौन सा किचड़ा अंदर भरा है, कौन सी गंदगी से इतना प्यार है? पकड़ के ही रखा है उसको। सेवा, सेवा करते समय स्थिति कैसी रही? श्रेष्ठ रही, ऊंची रही, या डिस्टर्बेंस हुआ? आने वाले संडे की मुरली, खुद भी डिस्टर्ब नहीं होना है, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, खुद संतुष्ट रहना है, दूसरों को संतुष्ट करना है। सेवाधारियों से मुलाकात, क्या सेवा की? सेवा की रिजल्ट क्या है? सेवा का परिणाम क्या है? क्या प्राइज लेकर जा रहे हो? एक एक नंबर वन सेवाधारी है, एक एक को फर्स्ट प्राइज मिलनी चाहिए। बाबा कहते फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, डिस्टर्ब ना होना, खुद डिस्टर्ब, दूसरों को ना करना और खुद डिस्टर्ब ना होना। ऐसी सेवा जिसमें भयंकर डिस्टर्बेंस चल रहा है, हम भी डिस्टर्ब है और दूसरे भी डिस्टर्ब है, दूसरे डिस्टर्ब नहीं पर हम डिस्टर्ब है, ये कोई सेवा नहीं है। तो हर तरीके से, हर प्रकार से, चारों ही सब्जेक्ट में चेकिंग। योग का एकाग्रता क्यों कम है योग में, क्यों योग में बैठते बुद्धि भटकने लगती है और सारा पास्ट समीप आ जाता है, सामने बिखरता है, पास्ट की बातें, इसकी उसकी बातें, यहां वहां की बातें याद आने लगती है। ज्ञान में चिंतन क्यों नहीं हो पाता, महान चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, चिंतन करने जाओ तो बुद्धि फंस जाती, अटक जाती है, बस आगे बढ़ता ही नहीं। अब चिंतन क्या करना है, जो बोलना तो बोल तो दिया बाबा ने, इसमें चिंतन की क्या आवश्यकता है, बोल दिया 8 घंटा सेवा करो, नहीं तो खाना हराम है, बस हो गया। अब इसमें आगे क्या करना है, अच्छा ही तो बोला है और बाबा ने बोला तो राइट ही होगा, हो गया चिंतन पूरा। इसमें चिंतन करने का तो कुछ है ही नहीं, चिंतन तो तब होगा जब डाउटफुल होगा, हम तो पूरा स्वीकार करते हैं इसको। भगवान ने बोला है राइट ही है, ऐसा कहेंगे तो चिंतन नहीं होगा। चिंतन अर्थात क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस तरह, सारे प्रश्न आने चाहिए। इसलिए नहीं कि हम संशय कर रहे, इसलिए क्योंकि हमें अपने उसकी गहराई को समझना है। बाप खुद कहते हैं जज करो मैं जो सुनाता हूं वो राइट हो है कि भक्ति मार्ग वाले जो सुनाते हैं वो राइट है। अंधश्रद्धा से इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करो। तो सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को, श्रेष्ठ मत को कहां तक प्रैक्टिकल में लाया उसकी, उसको चेक करो। और साथ साथ तो सर्व मर्यादा है, सर्व फरमान, श्रेष्ठ मत कहां तक जीवन में उतारा है, या बस थियोरी, सैद्धांतिक सिद्धांत बने हैं, डायरियों में छपे हुए हैं, लिखे हुए, और जीवन रिक्त है। ऐसा ना हो। और मधुबन महायज्ञ में सदाकाल के लिए अंतिम आहुति डालो। क्या करो, मधुबन महायज्ञ में आए हो तो सदाकाल के लिए अंतिम आहुति किसकी, सभी कमजोरियों की, सभी विकारों की। सोचो हम महातीर्थ पर आए हैं, भाग्य ने मौका दिया है, एक हफ्ता, एक मास या जितना भी समय आए हैं सभी यहां रहने का, यहां रहकर व्यर्थ सोचना, देखना, टाइम वेस्ट करना। जगदीश भाई कहते थे महामूर्खों के महामंडलेश्वर बनना है। क्या बनना है, मूर्खों के महामंडलेश्वर, ऊंचा पद है पर बहुत आत्मा इस पद के पीछे है। मैं बनूंगा, अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ। प्यार से भगवान बात कर रहा है तो उल्टा एडवांटेज मत उठाओ, बाबा कह रहे हैं, नहीं तो धमकी है अब आगे। नहीं तो नहीं तो क्या दिलीप भाई जी, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, मैं जो प्यार से व्यवहार करता हूं, बोलता हूं, उल्टा एडवांटेज नहीं उठाना, नहीं तो क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, धर्मराज का रूप धारण करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, पप्पू भाई नहीं तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, छोटा कर दूंगा, मिडगेट, नहीं तो क्या कर दूंगा, धर्मराज बनकर चाबुक लगाऊंगा दंडे, और क्या करूंगा, नहीं तो शापित कर दूंगा, नहीं तो। तो बाबा कह रहे अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। ये 75 की मुरली चल रही है, 26 अक्टूबर 75, इतना पहले ये सारी बातें कह के रखी है उसने। तो सेल्फ पनिशमेंट की बातें हमने देखी। अंतिम महाकाल के आगे एक का हजार गुना पश्चाताप करना होगा, 26 अक्टूबर 1975। तो ऐसा कोई काम ना हो कि जिस वजह से पश्चाताप करना पड़े। बेदाग जीवन, स्वच्छ जीवन, पारदर्शी जीवन, जिसमें कलंक ना हो, कलमश ना हो, धब्बे ना हो, धूल और मिट्टी ना हो पर चिंतन पर दर्शन की, ऐसा पवित्र शुद्ध बेदाग स्वच्छ निर्मल पावन पुनीत प्योर क्लीन क्लियर जीवन बाबा को प्रिय है। ओम शांति।